पार्टी के साथ भी मामला कहा जा रहा है कि वो तय हो गए हैं बजट को लेकर, और जो डिफेंस बजट को लेकर मामला हो रहे थे जिसमें वफाक ने कहा कि जनाब अब सूबे भी इसको जो है वो अपना अपना हिस्सा डालें, तो इस पर भी रजामंदी हो गई है। इसका क्या फ्रेमवर्क होगा ये भी आगे चलकर इंशाल्लाह 7 बजे के बाद जो है वो आपके साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टूडियो का नंबर 416-620-1778। टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, आपने हमारे साथ रहना है।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $2000।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशक, 6472903773, 6472903773।
पेट्रो कैनेडा पेश कर दे ड्यूरॉन हैवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल्स, हुन फुल सर्विस सेविंग्स नाल 10W30 सिंथेटिक $20 डिस्काउंट, 5W30 $40 डिस्काउंट, ऑफर लिमिटेड टाइम ले, 5W30 क्विक स्टार्ट और ऑयल फ्लो ठंडे मौसम विच जेतु, 10W30 इंजन दी कारगुजारी नु बनाए रखदा, QTL दी 3 लोकेशंस ते पुजो और लाभ चको, एग्जिट 268 कैम्ब्रिज, एग्जिट 579 नैपनी, एग्जिट 5 फोर्ट एयरी, पेट्रो कैनेडा और QTL, बल्ले बल्ले अनूठा साख।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
सीट महल ते स्वाद दी आरो दुनिया हुई दीवानी, हो शुद्ध खोए दी ये मिठाई रज रज के तुसी खानी, नॉन वेज ते वेज फूड दा स्वाद बड़ा तूफानी, साडे स्वीट महल दा लभना नी कोई सानी।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁੱਖਾ ਕੰਗ ਜੀ ਨੂੰ 416-679-9991 ਤੇ 416-679-9191।
ट्रक ड्राइवर भाइयों, अब यूएस और कनाडा में अनलिमिटेड डाटा, वीवो टेलीकम्युनिकेशंस के साथ फुल स्पीड, नो रुकावट, सफर बिजनेस का हो या शौक का, वर्ल्ड वाइड ई सिम डाटा प्लान के साथ इंटरनेट हमेशा रेडी। ट्रैवल कर रहे हो इंडिया, पाकिस्तान या हज या उमरे के लिए, वीवो टेल के साथ हमेशा रहो ऑनलाइन, दूर दराज इलाका कोई प्रॉब्लम नहीं, घर हो या केबिन, वीवो टेल की हाई स्पीड इंटरनेट चलती है दुनिया के किसी भी कोने में। विजिट करें vivotel.com या कॉल करें 416-243-9836। कनेक्शन आपका दुनिया के साथ।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828, 905-450-2828।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਨਵਾਂ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ। 2 ਵੱਡੇ ਹਾਲ, 100 ਤੋਂ 600 ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਵੱਡੀ ਆਸਾਨ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਦਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, 416-736-6820, 416-736-6820।
ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮੋਹਰੀਨਾ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਤੁਸੀਂ 1 ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਫਲੀਟ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵਡ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਸਟ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਆਇਲਸ, ਫਿਲਟਰਸ, ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ QTL, ਐਗਜ਼ਿਟ 268 ਹਾਈਵੇ 401 ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਹਾਈਵੇ 401 ਨੈਪਨੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ 5 QEW ਫੋਰਟ ਏਰੀ। ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ QTL, 519-622-0660, ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਵੇ।
चांदनी
बैंक्वेट हॉल
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस साउंड सिस्टम इनोवेशंस चांदनी बैंक्वेट हॉल
30 इयर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट इवेंट एग्जीबिशन एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन
इंडोर एंड आउटडोर गोल्फ कोर्स फैसिलिटीज चांदनी बैंक्वेट हॉल फॉर अपॉइंटमेंट कॉल टुडे एट 905-458-8888 और विजिट chandnivictoria.ca
हाँ जी जरा एक वेबसाइट नोट करो afcgrocery.com ए है जी एशियन फूड सेंटर की ब्रांड न्यू वेबसाइट जिथों तुसी इंडो कैनेडियन ग्रोसरी मिठाइयां ताजिया सब्जियां फल फ्रूट इंडिया वाले भांडे सजावट का समान सारा कुछ जो स्टोर ते जाके देखना हुण एशियन फूड सेंटर की इस वेबसाइट ते देखो $100 या इस तो ज्यादा दे ऑर्डर ते पाओ फ्री डिलीवरी इन ऑल GTA एरियाज फ्री कर्बसाइड पिकअप अवेलेबल इन ऑल लोकेशंस ऑन सेम डे विजिट afcgrocery.com
मेनू चाहिदा है फ्यूचर सिक्योर
ती मेनू चाहिदी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी मोर ते फिर क्यों जाना किते होर आज ही कॉल कमाओ इंश्योरेंस एडवाइजर साजनदीप सिंह नू
तुहानू तुहाडियां लोड़ां मुताबिक बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी वधिया रेट ते लैके दिंदे ने
लाइफ इंश्योरेंस सुपरविजा इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस FHSA ट्रैवल एंड विजिटर इंश्योरेंस RRSP RESP TFSA आज ही कॉल करो ऑल काइंड इंश्योरेंस दे इंश्योरेंस एडवाइजर साजनदीप सिंह नू 647-769-21
First mortgage, second mortgage, ya phir ho ve loan
Socho na bas, bilkul bhi, hone milao phone
416-502-8000 स्ट्रेस चाहे लख दा होवे या कख दा उस जिंदगी मुश्किल कर देता है बाकी बातें एक तरफ आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000 लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड
अकाल 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 मॉर्गेजेस
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही शिनवारी गोट कड़ाही निहारी हलीम पाए बिरयानी सीख कबाब चिकन टिक्का शवरमा पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन वही देसी अंदाज और वही देसी जायका 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा यूनिट 3 ऑर्डर नाउ कॉल 416-526-6800
चांदनी बैंक्वेट हॉल
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस साउंड सिस्टम इनोवेशंस चांदनी बैंक्वेट हॉल
30 इयर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट इवेंट एग्जीबिशन एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन
इंडोर एंड आउटडोर गोल्फ कोर्स फैसिलिटीज चांदनी बैंक्वेट हॉल फॉर अपॉइंटमेंट कॉल टुडे एट 905-458-8888 905-458-8888 और विजिट chandnivictoria.ca
हेलो नवदीप की हाल है बलजीत गल कर रही हूं यूके तो
तुसी कनाडा तो यूके गए हो तुहानू रोमिंग लग जाएगी ते बिल बहुत बड़ा आएगा
फिकर दी कोई गल नहीं है मेरे कोल वीवरटेल दी रोमिंग सर्विसेज है बहुत ही घट कीमत ते 5G इंटरनेट रोमिंग सर्विसेज तुसी किते भी ट्रैवल कर रहे हो यूके इंडिया पाकिस्तान सऊदी अरेबिया बहुत ही घट कीमत ते डाटा रोमिंग हासिल करो जे तुसी भी ट्रैवल दा प्लान कर रहे हो ता वीवरटेल नु कांटेक्ट करो 416-243-9936 416-243-9836 जां फिर विजिट करो वीवरटेल.com
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828
مسئلے سے نجات کے لیے ایک ہی نام محمد صدیق آل دا سولوشن پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80% محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں پرسکون زندگی اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577
کیا بات ہے بیٹے بڑی آزاد نظر آ رہی ہے
ابو جان صبح کا واسطہ اس گاڑی سے تو دوسرے ایک گدا گاڑی خریدتے ہر موڑ پہ کھوپ جاتی ہے
تو بچے پریشان کیوں ہوتی ہو لاؤ گاڑی کی چابی دو ابھی لے کر جاتا ہوں پریمیم آٹو رپیئر گاڑی کی نبض دیکھ کر خرابی کی جڑ تک پہنچ جائیں گے
میری سہیلی نے بھی کہا تھا
وہاں پر کولنگ سسٹم انجن ٹیون اپ چار ویل کمپیوٹر بیلنس بریک نئے اور پرانے ٹائر ساتھ آئل فلٹر مفت میں چینج اسٹارٹر آلٹرنیٹر گارنٹی کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں بس اس کے بعد تمہاری گاڑی فر فر بھاگے گی اس کی میلوٹ ڈرائیو ریٹوبیکو ٹیلی فون 416-747-6800
خوش آمدید تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر پروگرام سازو آواز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد جناب اسٹوڈیو کا نمبر 416-620-1778 اور اب میں آپ کی ایک ملاقات کراتا ہوں جو آپ کو پہلے تو آپ کو بچا بھی لیتے ہیں ہاں بچاتے بھی ہیں مجھے لگتا ہے بچاتے ہیں یس وہ بچا بھی لیتے ہیں آپ کو ہوشیار بھی کرتے ہیں آپ کو تنبیہ بھی کرتے ہیں جناب یہ چیزیں نہ کریں خدا را نہ کریں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم سب عام کامن آدمی جو ہے وہ غلطی کر جاتا ہے اور وہ جب غلطی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم یاد کرتے ہیں کس کو وہ ہیں آل ڈیٹ سولوشن سے محمد صدیق صاحب اگر آپ کا پیارا کوئی بھی یا آپ یا آپ کا کوئی دوست آپ کا رشتہ دار کوئی بھی خدا نہ خاصا کسی قرضے میں مبتلا ہو گئے تو ہم ہمیشہ ہر ہفتے بدھ کے دن محمد صدیق صاحب کو یہاں انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جناب خدا را خاصا اگر کوئی پھنس گیا تو اسے کیسے اس قرضے سے باہر نکالا جائے اور اس میں کیسے محمد صدیق صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے اس وقت بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آئیے انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم صدیق صاحب کیسے ہیں آپ
وعلیکم السلام عمر بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں
الحمد للہ سر دعائیں آپ کی میں نے کہا لوگوں کو تھوڑا میں بتا دوں کہ وہ تھوڑا سا ڈانٹیں گے بھی آپ کو شاید کیونکہ آپ سنتے نہیں ہیں ان کی باتیں نا وہ بےچارے بتا دیتے ہیں کہ یار کسی ماموں چچا پھپھو کے بچوں سے یا لوگوں سے مشورہ نہ کرو اور یہ خاص کر صدیق بھائی اس پر ضرور امفسائز کرے گا یہ جو لوگ منیمم پیمنٹ پر جو پھنس جاتے ہیں تو آج جو ہے نا ہم اس پر ضرور بات کریں گے پہلے تو تھوڑا سا بتائیے آل ڈیٹ سولوشن کے بارے میں پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں
جی امر بھائی ہم پچھلے 25-26 سالوں سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اگر کسی بھی وجہ سے وہ قرضے میں آ جاتے ہیں چاہے وہ پرسنل قرضے ہوں بزنس کے قرضے ہوں چاہے وہ چھوٹے قرضے ہیں یا بڑے ہم ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے کئی آپشنز اویلیبل ہیں اور اس میں اگر کچھ آپشن ایسے بھی ہیں جس میں کریڈٹ بھی خراب نہیں ہوتا لیکن کریڈٹ اگر خراب ہوتا بھی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے دوبارہ کریڈٹ بلڈ کیا جا سکتا ہے ہم اپنے کلائنٹ کو انرول کرتے ہیں کریڈٹ ریبلڈ پروگرام میں اور اس میں ان کا کریڈٹ ریبلڈ کرنے میں پوری پوری ہیلپ کی جاتی ہے اور بہت جلد کریڈٹ واپس مل سکتا ہے عمر بھائی میں نے جو پچھلے 25-26 سالوں میں دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنا پیسہ انٹرسٹ میں بہت زیادہ ضائع کر کے ہمارے پاس آتے ہیں اپنے لیے وہ تھوڑا سا 20-25-30,000 یوز کرتے ہیں جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے لیکن باقی 60-70-80 سم تھنگ لاکھ ڈالر انٹرسٹ میں ضائع کر دیتے ہیں اور وہ کیوں ضائع کرتے ہیں یا تو ان کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی نہیں ہے یا غلط انفارمیشن ہونے کی وجہ سے وہ بس منیمم پیمنٹس کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب کافی سارا پیسہ انٹرسٹ میں آلریڈی ضائع ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے میں تو کہوں گا کہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ پہ قرضہ کتنا ہے یہ دیکھیں کہ آپ اس کی پیمنٹ کیسے کر رہے ہیں اگر آپ منیمم پیمنٹ سے کیے جا رہے ہیں پچھلے 2-3 مہینے سے یا ایک کریڈٹ کارڈ کا بل دوسرے کریڈٹ کارڈ سے پے کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ آپشن ایکسپلور کریں چاہے وہ کال کر کے فون کی انفارمیشن لے لیں یا میری کسی بھی لوکیشن پہ آ کے مجھ سے مل سکتے ہیں فری کنسلٹیشن ہے کچھ آپ نے پے نہیں کرنا آئیں انفارمیشن لیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر گھر بیٹھے کسی فیملی فرینڈ سے یا کسی بھی نیبر سے مشورہ کر کے آپ ڈیسیزن لیں گے تو میں پچھلے 25-26 سالوں کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا آپ ڈیپ ڈیٹ میں بھی جائیں گے اور آپ کا کریڈٹ بھی زیادہ خراب ہوگا اس لیے اگر کوئی قرض ہے چاہے وہ چھوٹا یا بڑا تو نمبر ہے 416-671-0577 416-671-0577 0577 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
जी बिल्कुल, मोहम्मद सिद्दीक साहब का नंबर है 416-671-0577। अब सिद्दीक भाई थोड़ा सा लोगों को बताएं कि एक जो मिनिमम पेमेंट के जो मामलात हैं, बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को लगता है जी $100 दे दें, $200 मिनिमम पेमेंट कर दें तो आपका जो है वो उतरता रहेगा। लोगों को लगता है कि यार ठीक है हम मिनिमम करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल तो ये उतर ही जाएगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि लोग कैसे ट्रैप हो जाते हैं
इसमें। अगर आप स्टेटमेंट देखें ना तो उसमें, सॉरी अमर भाई, स्टेटमेंट देखें तो उसमें ये होता है कि 10-12 डॉलर, 15 डॉलर, 100-200 में से वो प्रिंसिपल में जा रहे होते हैं, बाकी सारा इंटरेस्ट में जा रहा होता है और सारा पैसा जाया हो रहा होता है। इसलिए मैं कई दफा कहता हूँ कि भाई पिछले 2-3 महीने की स्टेटमेंट चेक कर लें और देखें उसमें आपका पैसा इंटरेस्ट में कितना गया है। तो जब वो देखेंगे तो आपको रियलाइज करेंगे कि आपका पैसा जाया हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स पे लिमिट होती हैं तो बिल्कुल हम नहीं देखते कि हमारा इनकम कितनी है और हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, जस्ट खर्चा किए जा रहे होते हैं। और पहले कुछ वक्त होते हैं जब क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो जाती है, सारे क्रेडिट कार्ड भर जाते हैं, फिर उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो आप उस टाइम का वेट ना करें कि आपके सारे क्रेडिट कार्ड भर जाएं, आप स्टक हो जाएं, उस वक्त आप देखें। अभी से अगर आप मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो कर्ज आपका $5,000 का है, 10,000 का है, 20 का है, लाख का है, मिलियन का है, जितना जल्दी हो सके आप ऑप्शन एक्सप्लोर करें और मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 416-671-0577 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
बिल्कुल जनाब, अगेन मोहम्मद सिद्दीक साहब का नंबर 416-671-0577। सिद्दीक भाई एक और सवाल यहाँ है कि लोग डरते हैं कि यार अगर ये जो हम कर्जे के चक्कर में फंस गए तो इसमें जो है वो बैंक जो है, अगर किसी के पास घर है या गाड़ी है उसको जो है वो ले जाएंगे, या ये क्या मामलात होते हैं, लोगों को किस किस्म के जो है वो कर्जे होते हैं जिससे आप जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं यानी रिलीफ ले सकते हैं, और ऐसे कौन से कर्जे हैं जिसमें जो है वो आपको रिलीफ नहीं मिलता, फिर वो आपको कोई ना कोई दूसरा सोल्यूशन उसमें निकालना पड़ता है।
बिल्कुल, इसी डर की वजह से लोग हमारे पास नहीं आते कि मेरे नाम पे घर है मुझे रिलीफ नहीं मिल सकता, मेरे नाम पे RRSP है मुझे रिलीफ नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है, आप अपने तमाम एसेट्स अपने पास रखते हुए भी रिलीफ ले सकते हैं। हो सकता है कम रिलीफ मिले, रिलीफ आपको जरूर मिलेगा लेकिन रिलीफ ले सकते हैं आप। और सब कुछ एज इट इज, जो आपके घर हैं, गाड़ियां हैं, बिजनेसेस हैं, RRSP, सारे एसेट्स एज इट इज आपके पास रहेंगे, कुछ आप लूज नहीं करेंगे और बड़ी आसानी से आप डेट फ्री हो सकते हैं। सिर्फ आपने कॉल करनी है या मेरे ऑफिस में आके मुझसे मीटिंग करनी है, आधे घंटे की मीटिंग कर लें, आपके कुछ आपने पे नहीं करना। मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप किस पोजीशन पे हैं, आपके लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे, कोई कर्जा माफ होगा या नहीं होगा, अगर माफ होगा तो कितना माफ होगा, मंथली पेमेंट कितनी बनेगी, अगर क्रेडिट आपका खराब होता है तो कितनी देर में हम आपको वापस बैक टू ट्रैक पे लेके आएंगे। ये सारी चीजें पहली मीटिंग में ही मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद आपने डिसाइड करना है। एक चीज की मैं गारंटी करता हूं कि एक तो मेरे ऑफिस से आपको ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी, अगर आपको जरूरत हुई रिलीफ लेने की तो बताऊंगा रिलीफ लो, अदरवाइज कोई और ऑप्शन दूंगा। दूसरा, अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूंगा तो मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो आपसे वादा करूंगा पहली मीटिंग में उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा। और जैसा मैंने बताया, अगर इसमें आपका क्रेडिट खराब होता है तो हम आपकी क्रेडिट बिल्ड करने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे और बहुत जल्द आपको वापस क्रेडिट भी मिल सकता है अगर आप मेरी एडवाइस पे अमल करते हैं। नंबर है 416-671-0577। लोकेशन पे विजिट करना चाहें तो स्कार्बरो में है मार्कम एंड अलेक्जेंडर के पास, टोबैको में हेड ऑफिस है किपलिंग रैक्सडेल के पास, और ब्रैम्पटन में है ब्रैम्बली बुवेर के पास। नंबर डायरेक्ट लाइन है 416-671-0577 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
जी
मेरे भाई,
जी बिल्कुल, अगेन नंबर 416-671-0577 416-671-0577 मोहम्मद सिद्दीक साहब का नंबर है ऑल डेट सॉल्यूशन से। और खुदा रहा आप सबसे, जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलने की कोई फीस कभी भी मोहम्मद सिद्दीक साहब चार्ज नहीं करते, तो आप अपना सिनेरियो जरूर डिस्कस करें और बहुत ही प्राइवेसी के साथ जो है वो आपके केस को डील करेंगे। तो एक बार जरूर जो है मोहम्मद सिद्दीक साहब को कॉल करें 416-671-0577। सिद्दीक भाई आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए।
थैंक यू।
ये थे हमारे साथ अल्लाह हाफिज, ये हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक साहब ऑल डेट सॉल्यूशन से। अगर आप या आपका कोई भी प्यारा खुदा ना खास्ता फंस गया कर्ज में तो जनाब जरूर मिल लें। चलें जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे मैंने कहा 9 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा, आपकी कॉल्स भी लेंगे। आज आपने जो है वो पाकिस्तान में ही बात कर ली, मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली चौधरी साहब वहां से मौजूद थे, उन्होंने बहुत डिटेल में गुफ्तगू की जो हालात चल रहे हैं आजाद कश्मीर को लेकर, उस पर भी बात की। उसके बाद फिर आपने अजीम मियां साहब का भी तबसरा सुन लिया, आपको मुजफ्फर साहबा के साथ उनकी भी बातचीत हुई और एक डिटेल उन्होंने जो है मौजूदा हालात पर और सब पर उन्होंने गुफ्तगू कर ली। अब से थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा कि एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया। ईरान के कई शहरों में जो है इस वक्त धमाकों की आवाजें सुनाई गई हैं और ईरान की जो बंदरगाहें उन पर भी कई धमाके जो है सुनाई गई हैं। खबर एजेंसी की तरफ से जो है रिपोर्ट सामने आ रही हैं और ईरान ने भी इस वक्त ये कहा है कि तमाम जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे उनकी जो है उनको बंद कर दिया, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, चाहे वो गुड्स ले जा रहे थे या कोई जो ऑयल ले जा रहे थे उन सबको जो है वो इस वक्त ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब ये मामला देखते हैं रात भर किस तरीके से चलती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब बस राजी हैं किसी वक्त भी जो है वो अनाउंसमेंट करने के लिए कि जनाब डील ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन ये डील ऐसी है कि वो आगे बढ़ नहीं रही है और एक बार फिर जो है ये मामला ऐसे हैं कि दोबारा से सेंटकॉम की तरफ से ये मैसेजेस भी अभी जारी किए गए कि उन्होंने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने के ऊपर ईरान के ऊपर जो है खासकर उसके जो साहिली इलाके, ये कल भी मैंने आपसे इसी वक्त कल जब हम शो इख्तिताम की तरफ था मैंने आपसे शेयर किया था कि जनाब ये शुरू हो गई है, कल ही शुरू हो गए थे और ये आज भी जो है ये बमबारी जो है उनके ऊपर जारी है ईरान के ऊपर, और देखते हैं अब ईरान इसको किस तरीके से जवाब देता है और ये जंग के मामला जो है किस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में जनाब बात हो रही है बजट के बारे में, और बजट के बारे में जो है वो आज थोड़ा सा इस पर मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, फिर आप लोग भी अपना इनपुट उसमें जरूर डालिएगा। तो पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हुकूमत की आमदनी का बड़ा हिस्सा जो है वो अवामी फलाह या तरक्याती मनसूबों या बुनियादी सहूलियत पर खर्च होने के बजाय कर्जों की सूद की अदायगी में सर्फ हो जाता है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा माली मसला सिर्फ कर्जों का हजम नहीं बल्कि वो निजाम है जिसके तहत हर साल नए कर्ज लेकर पुराने कर्जों को और उनके सूद की जो है वो अदायगी की जाती है। पाकिस्तान हुकूमत सालाना खर्च जो है वो तकरीबन 20 अरब रुपए के करीब है, इसमें से तकरीबन 9000 अरब रुपए सिर्फ कर्जों की सूद की अदायगी पर खर्च हो जाते हैं और हुकूमत के कुल अखराजात का तकरीबन निस्फ हिस्सा सिर्फ कर्जों के बोझ को संभालने में सर्फ हो जाता है। इसके बाद पेंशन, सब्सिडीज, तरक्याती मंसूबे और दीगर सरकारी अखराजात में जो है वो रकम जो है वो मख्सस की जाती है। पाकिस्तान का कर्ज दो बड़े हिस्सों में तकसीम है, दाखिली कर्ज और खारजी कर्ज। दाखिली कर्ज में वो जो हुकूमत ने मुल्क के अंदर खसूसन बैंकों से जो है वो लिया है, जबकि खारजी कर्ज बैरूनी इदारों ममालिक से लिया गया है। मजमूई तौर पर यह कर्ज तकरीबन 90 खरब रूपये के करीब पहुंच चुका है। अगर इस पर औसतन 10% सूद अदा किया जाए तो सालाना सूद की रकम तकरीबन 9000 अरब रुपए बनती है, जो मौजूदा माली बुरान की बुनियादी वजह जो है वो समझी जाती है। इस पूरे निजाम में कमर्शियल बैंक एक मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, अवाम अपनी रकम बैंकों में जमा कराती है और बैंक उन्हें उन्हीं रकम को हुकूमत को कर्ज देते हैं। हुकूमत इन कर्जों पर सूद अदा करती है जिससे बैंकों को मुस्तकिल और निस्बतन महफूज मुनाफा हासिल होता है। नतीजन बैंकों के लिए निजी शोबे, सनतों या कारोबारी इदारों को कर्ज देना निस्बतन कम पुरकशिश लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हुकूमत को कर्ज देना जो है वो ज्यादा आसान और महफूज जो है वो समझा जाता है। दूसरी तरफ हुकूमत आमदनी में भी अखराजात के मुकाबले में नाकाफी है। तकरीबन 14000 अरब रुपए टैक्सों से हासिल होते हैं जबकि तकरीबन 2000 अरब रुपए गैर टैक्स आमदनी से आते हैं। इसके बावजूद जो है वो आईनी तकाजों के तहत तकरीबन 6500 अरब रुपए सूबों को मुंतकिल करना पड़ते हैं। जब तमाम अखराजात और जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखा जाए तो हुकूमत को हर साल तकरीबन 6000 रुपए या इससे ज्यादा की कमी का सामना होता है और ये कमी दोबारा कर्ज लेकर जो है वो पूरी की जाती है, जिससे कर्जों का हजम जो है वो मजीद बढ़ जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान एक ऐसे कर्जी चक्कर में फंस चुका है जहां नए कर्ज पुराने कर्जों को सहारा देने पर हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है, सूद की अदायगी बढ़ती जा रही है और इस पर बढ़ते हुए सूद को अदा करने के लिए मजीद कर्ज जो है वो लेना पड़ता है। इस सूरत हाल को डेट ट्रैप यानी डेट ट्रैप कहा जाता है, जो हम जिसका जो जाल है उससे जो है बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इस दौरान की एक बड़ी वजह टैक्स निजाम की कमजोरी भी है। इनके मुताबिक मुल्क में बहुत से शोबे या तो मुकम्मल तौर पर टैक्स नेट में शामिल नहीं है या फिर सियासी असर रसूख की वजह से मुनासिब टैक्स की अदायगी करने की, खास तौर पर जायदाद, तम्बाकू और बाज ऐसे बड़े कारोबारी शोबे हैं जिनको टैक्स चोरी और कमजोर निगरानी रियासती आमदनी को महदूद कर देती है। तकरीबन हुकूमत को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए मजीद जो है वो कर्जों का सहारा लेना पड़ता है। और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान गुज़श्ता कई दिहाइयों में कई मरतबा बैन अल-अक़वामी यानी IMF के प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। अगरचे IMF कर्जे मजमूई कर्जों के मुकाबले में निस्बतन कम है लेकिन इन प्रोग्रामों के साथ साथ सख्त माली शराइत जो है वो मुंसलिक होती है जिनमें टैक्स बढ़ाना, सब्सिडीज को कम करना और बजट खसारा महदूद करना शामिल होता है। इन असलाहत को सियासी तौर पर नाफिज करना अक्सर जो है वो मुश्किल साबित हो जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ माशी नहीं बल्कि हुक्मरानी और सियासी आवाम आजम का भी है। मुल्क में इस ऐसे ताकतवर मफाद मौजूद लोग मौजूद हैं जो मौजूदा निजाम से फायदा उठाते हैं, इसलिए बुनियादी असलाहत पर इत्तफाक राय पैदा नहीं होता। यही वजह है कि कर्ज खसारे और कमजोर टैक्स निजाम का मसला जो है मुसलसल बरकरार है। कई हलकों में जो है वो बैंकों के साथ कर्जों की शराइत पर दोबारा मुज़ाकरात, सूदी बोझ में कमी, टैक्स नेट की तौसी, टैक्स चोरी का खात्मा, शफाफ हुक्मरानी और कौमी सतह पर माशी असलाहत पर इत्तफाक राय शामिल है। और ये भी एक मौकफ है कि अगर ये इकदाम किए गए तो कर्जों का बोझ मजीद बढ़ेगा, तरक्याती अखराज महदूद होते हैं चाहे वो आवाम जहरी टैक्स दें या टैक्स ना दें। एक और भी एक जो हुकूमत है इस वक्त हुकूमत वक्त, उसने भी इस चीज को अपने कहते हैं कि स्टेटमेंट में यानी बयानबाजी में शामिल किया है कि हाइएस्ट जो है वो रेमिटेंस जो है इस साल भी हुकूमत वक्त पाकिस्तान जो PMLN इसको लीड कर रहे हैं वो कहते हैं कि जनाब सबसे ज्यादा इस साल भी हमने जो है वो रेमिटेंस हासिल की है पूरी दुनिया भर से। तो इससे साबित होता है कि बाहर बैठे लोग जो हैं वो हमारे ऊपर जो हैं वो एतमाद करते हैं और हमारी हुकूमत को, हमारी पॉलिसियों को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए जो हैं वो रेमिटेंस यहां पर ज्यादा से ज्यादा नहीं हर साल वो ज्यादा रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान भेज रहे हैं और इस बार भी रिकॉर्ड रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान में पहुंची। ये हमारे जो हुक्मरान तबका है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं और आप लोग माशाल्लाह सब समझदार हैं, आपकी नजर में जो जिस तरह से ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि हुक्मरान जमात के लोग ये कहते हैं कि जनाब रिकॉर्ड जो है वो रेमिटेंस पाकिस्तान में आई है और ये साबित करती है कि इस पर जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं, हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है लोगों को जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसी वजह से वो ज्यादा जो है वो रेमिटेंस हर साल जो है वो ये रेमिटेंस बढ़ती जा रही है। तो आप लोग इस पर क्या मुझे जवाब देंगे कि जनाब ये रेमिटेंस एक तरफ हम कहते हैं जी बैड गवर्नेंस है, गवर्नमेंट जो है वो सही पॉलिसीज नहीं बना रही, कर्जों में डूबता जा रहा है पाकिस्तान, तो फिर ये रेमिटेंस जो है वो हर साल क्यों बढ़ रही है? तो ये मैं आप लोगों से आज सवाल छोड़ूंगा प्रोग्राम में और आप लोगों की राय भी इस पर लूंगा। मैं तो उसका जवाब दे दूंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग अपना इनपुट इसमें डालें कि क्या वजह है कि एक तरफ कहते हैं कि हुकूमत जो है वो अच्छी गवर्नेंस नहीं दे रही है, अच्छा निजाम नहीं चला रही है, मसाइल हैं पाकिस्तान में, सब कुछ है, लेकिन ऑन द अदर साइड और ये फैक्ट नंबर है कि रेमिटेंस जरूर बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, हर साल रेमिटेंस बढ़ती जा रही है और क्यों बढ़ती जा रही है इसका रीजन फिर मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन पहले आपने अपनी राय जो है वो इसमें जरूर शामिल करनी है कि रेमिटेंस क्यों बढ़ रही है और हर साल पिछले साल के मुकाबले में रेमिटेंस बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये आपकी कॉल लेंगे 416-620-1778 416-620-1778। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। 0169 अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जी सलमान भाई कैसे?
जी अपने देखने कर्जे तो एक जब से होश संभाली है हर एक ने वो कर्जों की दलदल में कि बच्चा भी एक माँ के पेट में है तो उसके ऊपर राउंड एक 10 लाख रुपए का कर्जा होगा। सीधी सी बात है, अगर एक फी कस को एक सामने रखे। देखिए कल बात हो रही थी कि मेड इन इंडिया की
जी,
और एक आपने वो एग्जांपल भी दी
जी,
वो टाटा है वो तो ठीक है, वो इधर भी है उनका कोई जो भी है साफ पता सारा कुछ है, लेकिन वो पहले सब सामने रखते हैं कि मेड इन इंडिया। अब रही है कि हम मेड इन पाकिस्तान, मैं किसी के टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है, हक के लिए रिस्क हलाल के लिए निकलता है अगर कोई पाकिस्तानी, उसकी एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा बच्चा, वो केलों की एक रेड़ी थी उसकी, किस ग्रुप ने एक लूटा, कोई भी है, वो पाकिस्तान में एक लूटा ना, वो बेचारा बच्चा अपने केलों के ऊपर एक लेट गया कि भाई ये मेरे हैं, मैं एक अपने सेल करनी है और मैं रोजी रोटी के लिए निकला हूं।
सही।
लूट कर सारे ले गए। इसी तरह एक पाकिस्तान के खजाने के साथ हुआ है।
ठीक सर।
किसने लूटा और किसने डाका मारा वो एक अगर सामने भी है, लेकिन एक मेड इन पाकिस्तान पाकिस्तानी बेबस है।
ठीक सर।
एनीवे
ठीक सर,
देखें फिर आपने कौन कौन से आते हैं बड़े बड़े के शौर रखने वाले हैं, अकलमंद है, तो मैंने तो एक मिसाल दे दी है कि वो बच्चा एक मेड इन पाकिस्तान।
ठीक सर, आपका आगे जवाब सर।
जिसने उस मुल्क को भी संभालना था, उस मैशियत को भी, और एक हक के रिज़्क़ के लिए के निकला है, वो एक पार्ट टाइम है कि अपने मजदूरी भी कर रहा है और एक अपने उसने स्टडी भी करनी है।
सही।
और एक वो मेड इन पाकिस्तान के साथ जो हाल हुआ वो सारी दुनिया ने के देखा, सारे पाकिस्तान ने देखा।
बहुत शुक्रिया।
चाहे अंदरून पाकिस्तान है चाहे बैरून पाकिस्तान।
ठीक हो गया सर। चले सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का सर। ख्याल रखिए अपना। स्टूडियो का नंबर 4166201778। और जाहिर है मसाइल तो हैं, लेकिन हम आज जो है थोड़ा सा बजट पर भी बात कर लेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, मुझे लगता है कि ये एक हम बचपन में वीडियो गेम्स खेलते थे ना, थोड़ी देर में जो है आपको लगता था हाँ जी ठीक है अब जीतने लगे, फिर आप थोड़े हारने लगते थे, फिर कुछ थोड़ी वो बेईमानी भी करते थे। अभी थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया, ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अभी इस वक्त बयान दे रहा हूँ कि जनाब अभी कुछ देर में जो है वो हमले रुक जाएंगे। मतलब आप देखें कोई वीडियो गेम चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, लिटरली मेरे सामने जो इस वक्त तमाम मीडिया स्क्रीन लगी हुई है और मैं सबको देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी ईरान पर बमबारी जल्द रोक दी जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का इस वक्त स्टेटमेंट जो है वो तमाम ही मीडिया आउटलेट्स उसको चला रही हैं कि ईरान पर जो अभी हमले किए हैं वो कुछ देर में रुक जाएंगे। मतलब तो पानी है कि कुछ देर में बंद हो जाएगा, या पानी खोला था नल के या कुछ दिन कुछ देर में आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो मेरे को लगता है कि अल्लाह ही जो है वो उनसे हिसाब किताब ले लेगा। ऐसा लगता है कि बस वो खेल रहे हैं, समटाइम ऐसा लगता है कि वो खेल रहे हैं इन चीजों से। हालांकि टाइम उनके पास नहीं है, दूसरे एंड पर अगर ईरान से खेलने जाएंगे तो ठीक है, अभी मुहर्रम का महीना वैसे ही शुरू होने वाला है, बस कुछ ही दिन रह गए मुहर्रम के चांद दिखने में भी। लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अगर ये एक आध महीना और खींच दिया उन्होंने इस तरीके से, तो वैसे ही उनके नंबर्स जो है पॉपुलैरिटी के नीचे जा रहे हैं, वहां महंगाई बढ़ती जा रही है अमेरिका में भी, और अगर ये ज्यादा बढ़ा तो उनके लिए मिड टर्म इलेक्शन जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन भारत अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है कि मैं ईरानी हुकाम से बराह रास्त जो है वो बात की है और उनको बताया है कि ये हमले जो हैं वो थोड़ी देर में जो है वो ये हमले जो हैं वो रोक दिए जाएंगे। और उन्होंने बकौल उनके कि ईरान ने मुझसे बमबारी रोकने की दरख्वास्त की है, मतलब क्या बोल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को। भारत चले जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं, एक और हेडलाइन शामिल करते हैं। वजीर आजम के मुशीर राणा सलाउना जो हैं वो एक निजी चैनल से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत साजी से मुतालिक 15 तारीख को फाइनल नंबर गेम सामने आएगा, उन्होंने मजीद 2 या 3 सीटें मिल जाएंगी। राणा सलाउना का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने उनसे जो है वो अभी कोई राबता नहीं किया। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी के नदीम अजबचंद ने कहा है कि उन्हें मतलूबा 3 सीटें मिल जाएंगी। इसके अलावा पीटीआई के जो है पीटीआई के शहर उत्तरम कई के ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस जमात उनकी जमात जो है वो अपोजिशन में रहे तो वो बेहतर है। तो जनाब ये मामला थे। वफाक की बात करें, जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वफाक की हुकूमत ने जो है वो तकनीकी कमेटी जो है वो बना दी है पीपल्स पार्टी से, जो बनाई थी वो पीपल्स पार्टी से उनके मजाकरात जो है वो कामयाब हो गए। वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत तकनीकी कमेटी की टीम गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी से कामयाब मजाकरात हुए, जिसमें आइंदा माली साल के बजट से कल अहम मालियाती मफाद तय किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी और कौमी जो है महासिल की तकसीम के लिए एनएफसी के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी, जिसके तहत वफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को जो है वो महासिल अदा करेगा। जराए का कहना है कि रवा माली साल की नस्बत आइंदा माली साल की इजाफी महासिल वफाक को दिए जाएंगे, जबकि सूबे ग्रांट्स के लिए वफाक को इजाफी महासिल फराहम करेंगे। तो जनाब ये भी डील हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और देखते हैं अब ये वफाक के मामलात जो हैं वो हल हो गए। और असल मसला जो है वो पैसों का ही है कि जनाब वफाक कहते हैं कि जनाब हमारे पास जो है वो बिल्कुल पैसे नहीं है, और सूबों को जो है वो हम सब दे देते हैं, तो सूबों का बनता है हक के जनाब वो भी हमारे साथ जो है वो उसमें डालें। खासकर जो है बेनजीम इनकम सपोर्ट के बारे में जो है काफी वफाकी हुकूमत के खदशात थे, वो कहते थे कि जनाब ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे सूबे जो है वो खुद अपने तरफ से हैंडल करें, इसे वफाक जो है वो हैंडल नहीं करेगा। तो ये सारे मामला क्या है इसे आगे चलकर भी प्रोग्राम में साथ साथ शामिल करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जरदारी साहब, कैसे हैं?
वालेकुम सलाम, आमिना कैसे? ठीक है।
दुआएं सर, आप बताइए।
वो मैंने आपके दोस्त को कॉल करके पूछा था पैकेज था पाकिस्तान का, उसने कुछ चीजें भेजी हैं मुझे, वो तो चलो हो जाएगा। अच्छा आते हैं, जो पीपल्स पार्टी की इनसे डील हुई
जी,
या जो वफाकी हुकूमत से डील हुई है, उस डील में जो सिंध के मोटरवे हैं, जो बलूचिस्तान के मोटरवे हैं, वो हैं या वो ढीले ढील हो गए?
वैसे तफसीलात आ जाएंगी इंशाल्लाह, तफसीलात आ जाएंगे। अभी तो मामलात जो हैं वो पैसों के पहले ऊपर ऊपर से तय हो गए कि वफाक ये कहती थी कि
मुझे ये बताया ना, पीपुल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट है और कश्मीर में गवर्नमेंट है,
तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी हो गए, आपका वजीर आला बैठ गया,
वो बनने जा रही है। कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, क्या करेंगे, जो सरकार ऊपर वाले के है जी वही करेंगे। ये फुटोज थोड़ा ही है, फुटोज होते थे जो जान देते थे, चले बहरहाल हम अपना खून क्यों जलाएं?
नहीं सर, एंजॉय करें।
मेरा सिर्फ ये है, मेरा सवाल ये है, ये डील हुई है या ढील हुई है?
बस सर एक आध दिन में आ जाएंगे इंशाल्लाह, 12 तारीख को बजट पेश हो जाएगा तो सामने आ जाएगा।
तो आगे दिखाए जा रहे हैं ना, गुज़िश्ता 18 साल से जब से मुशरफ का दौर गुजरा है, तो पंजाब में तो हर डिस्ट्रिक्ट को मोटरवे मिल गया। मैं फिर सवाल उठाता हूँ, इसमें पंजाबी नाराज ना हो जाए, मैं सवाल उठाता हूँ कि तीन कोर्ट हैं साउथ में, एक बलूचिस्तान में, दो सिंध में, तो हमेशा अमारत की बुनियाद नीचे से ऊपर होती है, तो ये छत डाल दी है, अब दीवार खड़ी हो रही है, लेकिन वो जो फ्लोर बनना है ना, ग्राउंड फ्लोर, वो अभी तक नहीं बन पा रहा है इनसे। या तो आप इतना अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं कि जो कुछ मिलता है ना वो पंजाब में लगा दो,
सही,
वो इस्लामाबाद में लगा दो, वो लाहौर में लगा दो,
सही,
और फिर ये डील वाले बैठे हुए हैं, डील करके बैठ गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आवाज उठती है कमेटियों में, मैंने सुना शाजियावारी ने भी बात की, पीपुल्स पार्टी के दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं,
लेकिन सर कोई तो हल नहीं है ना, बात तो हो रही होती है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है।
नहीं, अब सऊदी अरब बनाएगा 10 साल मोटरवे, कौन सा जी सक्कर और हैदराबाद का,
ठीक सर,
तो सऊदी अरब को पाकिस्तानियों ने जाके बनाया और आप अब सऊदी अरब से बना रहे, इससे इससे तो अच्छा था ये जी शाहराम भुट्टो है ना, इसको एक्सटेंड करते जाओ पूरे सिंध में। आप जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किए हैं, मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, ये तीन लाइन की इधर का मोटरवे, तीन लाइन का इधर का मोटरवे, पूरे डिवीजनों को मिला दें आप, कराची को मिला दें, हैदराबाद को मिला दें, नवाबशाह को मिला दें, सक्कर को मिला दें, लाड़काना को मिला दें, थर को मिला दें, मीरपुर खास को मिला दें, कश्मीर को मिला दें, कंदकोट को मिला दें, जैकमाबाद को मिला दें, पूरी पूरी सिंध को मिला दें।
ठीक सर, देखते हैं सर, लासानी कर, दुआ करें सर,
तो नामुराद शाही रहेगा इसमें पीपुल्स पार्टी
में। सर सिंध में भी तब्दीली आ रही है, टेंशन ना लें, सिंध में तब्दीली आ रही है।
नहीं, वो जो तब्दीली आने वाला है वो तो उससे भी बड़ा गया
आ रही है सर। अब बिलावल साहब को मना लिया, जरदारी साहब
तो कहता हूँ,
जरदारी साहब ने मना लिया है बिलावल साहब को,
बस हो गई गाली मुकर।
बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए, ख्याल रखिए। चलिए जनाब एक और कॉलर हमारे साथ है, 9090। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं, आप क्या बताइए।
मैं जो है आपा प्रोग्राम के दौरान पूछ रही थी उसका नाम क्या है, तो मैं उनके पास भी टेक्स्ट करा, आपके पास भी करा, आप दोनों भी नहीं देखे, उसका नाम है गुटका।
किस चीज का? गुटके का सर? गुटका जो पान शालिया वाला गुटका?
नहीं, ये गुटका करके बिकता है, आपा बोल रहे थे एक दुकान अच्छा। है वहाँ मखसूस बेचते हैं अच्छा। करते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें, तो उसको दरअसल गुटका उसका नाम है, दो तरह के होते हैं, एक तो हथेली पे लेके घस के जिस तरह नसवार डाला जाता है होठों पे, दांतों के दरमियान, नीचे वगैरह, वो चीज होती है भी गुटखा, और उसमें कुछ ड्रग्स वग्स कुछ बना रहे थे, वो जिक्र कर रहे थे आपा, वो न्यूज में थी वो बात, तो बहरहाल उसका लफ्ज पूछ रहे थे आपा क्या है बोल के, तो मैं फौरी जवाब दिया गुटखा बोल के बेशतर वक्त जो भी बहरहाल। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया के ऊपर आपा बात कर रहे थे तमाम चीजें, तो मैं ये कह रहा हूं कि कल ही मार्क कार्नी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने कहा है कि अब मैं बहुत सख्ती से सोच रहा हूं कि सोशल मीडिया को यहां 16 साल 17 15 जो भी एज है उनकी 18 से
16 साल की आई
वो बंद कर दूंगा मैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बंद हो गया
जी।
और आपके एआई का इस्तेमाल भी मैं हत्तल इम्कान कम से कम चाहूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं कि वो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हरकतें कर रहा हो एआई। अब वो कल को रेडियो प्रोग्राम में कोई एआई के इस्तेमाल करे तो वो रेडियो प्रोग्राम में उसने जो है नाजेबा अल्फाज में बता दिया, तो वो सब परेशान हो गए यार ये कैसा ऑन एयर शो जा रहा। मतलब ये कि आप कोई चीज उसके इख्तियार में दे रहे हैं जो खुद अपने इख्तियार में नहीं है।
सही
समझिया, तो ये बातें हैं। बाकी ट्रम्प का आप जिक्र खैर करें तो इनका तो साहब मैं एक ही बात बोलता हूं, बहुत बेजार हो चुका हूं मैं। जैसा आपने अभी कहा कि कुछ नीली छतरी वाला ही काम करे तो कर दे, क्योंकि अब किसी को सताने की एक हद होती, याद रखिएगा, हद से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं की जाती। मगर ये टू मच कर रहे हैं, कभी बोलते आज रात में मैं बताऊंगा, फिर बोलते यार वो ऐसा करूंगा। इन्हें दुनिया पूरी हंस रही है, यूरोपियन यूनियन हंस रहा, सारे हंस रहे हैं। इनको अंदाजा ही नहीं है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना बड़े जिगरी बन गए और जबरदस्त उनका जो है वो हुआ इस्तकबाल हुआ, क्या क्या नए नए काम वो लोग कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। ये खाली अपने उसमें रह गए, दिखावे में, शो ऑफ में कि मैं भी कुछ हूं। तेल लेके आए बोले रात में ईरानी सो रहे थे तो मैं तेल ला लिया निकाल के। यार ये कोई बात ऐसी है कि आपके पास कोई बच्चा सो रहा उसके बगल में से आप खिलौना ला लिए, ये बातें आप अच्छी लगती है ऐसा पता नहीं क्या है सियासत में
देख सकते हैं। ये समझ रहा है
तो आसानी करेंगे
हमारी समझ से बाहर,
जो अवाम जो सेलेक्ट करती ना आमिर भाई उनको भी तो पशेमानी होना चाहिए ना। कौन बंदा चाहता, आप नहीं चाहते कि मैं अच्छे फ्रूट खाऊं, अपने घर में घर वालों को अच्छे कुछ चीजें ले आके दूं, ना कि पेट्रोल में जाया करूं पूरा पैसा। बोलिए आप, कल एक बुड्ढा मिला इतना गुस्से में आ रहा था, बोल रहा था मैंने हिसाब लगाया उसका कोई बिजनेस है वो ट्रक रोकों का, वो जाके सामान वामन डालते करते ना ये घास वास के परायल गैस हैस्टिंग का, वो रहा था $1700 हर हफ्ता बढ़ गए मेरे। बोला यार तू क्या बात कर रहा, बोला ये देखो, बोल के बिल निकाल के बताया तो $1700 वीकली उसके पेट्रोल में बढ़ गए, तो उन्हें किस हिसाब से खुश होगा ये मुझे बताया।
ठीक है सर, आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया।
एक और कॉलर हमारे साथ है, आईओ ने भी खुश आमदीद कहते हैं। 0117 अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब आपका? ठीक है,
बिल्कुल ठीक सर।
एक्चुअली वो मैं जरदारी साहब के साथ बहुत माजरत के साथ, वो काफी दफा वो मोटरवे के हवाले से पंजाब और सिंध की बात करते हैं, तो उनकी खिदमत में मतलब दोबारा मैं माजरत के महसूस ना करें। कराची और हैदराबाद के दरमियान जो सुपर हाईवे थी वो लाहौर इस्लामाबाद की मोटरवे से बहुत पहले बनी हुई थी
जी।
तो उस वक्त पंजाब में कोई मतलब उस अगर जिस टाइम ये बनी है उस वक्त पंजाब में इस मेयार की कोई सड़क
कोई काम नहीं,
मेरे ख्याल में नहीं था। और उसके अलावा ये है कि कराची से लेकर लोधरा तक रेलवे ट्रैक ड्यूल ट्रैक था, अब 10 से 15 साल पहले ये लोधरा से लेके लाहौर तक डबल हुआ है। तो उस वक्त तो पंजाब के लोग ये कह सकते थे कि वो सिंध में है सारा इस तरह है। और दूसरी बात यह है कि सखर का मुल्तान मोटरवे बन चुका है और अब सिर्फ एक ही पैच है वो जो है कराची टू सक्कर।
जी सक्कर तो से आगे तो सब बन गया है, वो तो
जी हाँ वो भी है। अब वो देखेंगे, गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की काफी दफा रही है
जी।
उसमें रही है और अगर चाहें तो हो सकता है अगर वो अपनी प्रायोरिटी में ले आए या जरदारी साहब उनको अप्रोच करेंगे।
वो सर वो भी जो हमारे जरदारी साहब है वो भी कहते हैं कि जो सदर जरदारी साहब हैं जो उनका टोला फंसा हुआ है वो चीजें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो निचली सतह पर जो है वो चीजें चल रही, वो भी यही आके यही बात करते हैं कि दूसरे लोगों को सामने लाया जाए। लेकिन बहरहाल देखते हैं, लेकिन तब्दीली आ रही है सर, सुनने में ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट्स पर काम जल्द शुरू होने वाला है।
जी जी, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो मतलब ऐसे मेरा वैसे तो बलूचिस्तान से ताल्लुक है, मैं वहीं पैदा पला बड़ा हुआ हूँ और मतलब काफी चीजें उसमें जो हमारे कुछ जो अवामी नुमाइंदे हैं यानी इनका भी बड़ा रोल है। करप्शन में बहुत सारे जो तरक्याती फंड हैं, ये जो मतलब वडेरे आ जाते हैं, सैयद आ जाते हैं, जो है वो बेचारे अवाम तो वो हाथ बांध के जो हारी हैं वो बैठे होते हैं जमीन पे और ये बड़े लोग ऊपर बैठे होते हैं, ये खा जाते हैं। लेकिन अब तब्दीली पब्लिक में भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता,
शऊर पैदा हो रहा है अवाम में,
चल रहा है। तो बस सिर्फ मेरा कहने का ये है कि इसको एक पाकिस्तान की नजर से देखें, ये ना सोचें कि जी ये पंजाबी है या
नहीं, कभी नहीं सर।
अगर रूलिंग क्लास उसकी कोई कौमियत नहीं है,
सही,
वो आपको
वो अपने मफाद के हैं सर, वो अपने मफाद के,
जो गरीब लोग हैं अब उसमें उनका तो नहीं कोई पॉलिसीज में कोई किरदार या वो है,
सही।
वो जो रूलिंग क्लास है वो ही है असल में जिम्मेदार,
और वो 20-25 खानदान है, बस वही खानदान है वही।
अब अगर अब अगर देखा जाए तो जब पीपल्स पार्टी, जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पीपल्स पार्टी बनी तो क्या उसको पंजाब के लोगों ने नहीं चाहा, सिंध से ज्यादा लोगों ने वोट दिए, सिंध से ज्यादा वो पॉपुलर थे, क्या किसी ने ये सोचा कि जी जनाब ये एक सिंधी लीडर है?
हाँ, पंजाब मुझे वो जलसा वीडियोस अगर आप देखें उस वक्त की पुरानी, तो पंजाब ने जो रिसेप्शन भुट्टो साहब को दिया था, इवन बेनजीर साहिबा को भी,
जी
जो 86, 88, 86, 89 के जो ये वाला 90s वाला जो था, 86 से पाइम नॉट रॉन्ग,
86, 87,
तो आप वो देखें बेनजीर साहिबा के लिए जो है वो पूरा पंजाब बाहर था।
जी जी बिल्कुल, तो
क्योंकि पाकिस्तान की लीडर ऐसा आ रही है ना, जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो फिर आपको हर सूबे से फिर वोट मिलेगा। इसीलिए आपको याद होगा बेनजीर साहिबा ने एज अ फेडरल की अलामत कंसीडर किया जाता था पीपल्स पार्टी में, नहीं कर पीपल्स पार्टी में अच्छे लीडर थे, अभी भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन मसला ये है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको आगे नहीं आने दिया जाता।
अब फिर वो है तालीम, बलूचिस्तान में क्या था पहले पूरे लाइक मैं कहता हूँ कि 2000 में आके सन 2000 में वहाँ पे वुमेन यूनिवर्सिटी, ये परवेज मुशर्रफ साहब के जफरुल्लाह खान के माध्यम से वजीर आजम उस वक्त वुमेन यूनिवर्सिटी। अच्छा, अगर उससे पीछे आप 80s में चले जाएं तो वहाँ पे गर्ल्स कॉलेजेस की तादाद सिद्धी होगा कोयटा या 3-4 एरियाज में थे। अच्छा, लोग जो है वो पुलिस में नहीं जाते थे, अगर आप पीछे चले जाए 70s 80s में 60s में के जी ये वो हमने ये वाली जॉब नहीं करनी। अब पुलिस में कौन होते थे लोग, पुलिस में पंजाबी स्पीकिंग जो बाहर से आ गए या पठान
ज्यादा थे
या उर्दू स्पीकिंग आ गए, इस तरह की सरकारी जॉब में। अच्छा, इवन जब आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में आ जाएं उसमें भी यही रेशो होता था। लेकिन अब अगर आप चले जाएं गुज़िश्ता 20-25 साल से बलूचिस्तान की तमाम आप देख लें असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर कमिश्नर या पुलिस में टोटली लोकल लड़के आए हैं, क्योंकि तालीम बढ़ी है पहले
और होना भी यही चाहिए सर, उनका पहला हक है जो लोकल्स हैं जो
असल में पहले ये था कि पहले तालीम नहीं थी या तालीम हासिल करने का शऊर नहीं था या जो भी वो एक अलहदा बहस है कि सरदार नवाब वो है, लेकिन अब वो चेंजेस आ गए। अब वो लड़के मकामी जो है वो CSS कर रहे हैं, PCS कर रहे हैं, अब आपको टोटल वो मिलेगी। अच्छा, पहले वहां पे लोकल आपको लेक्चरर्स नहीं मिलती थी गर्ल्स कॉलेजेस की, अब लोकल लड़कियां आ गई हैं।
सही,
तो इसी तरह वो जो जैसे जैसे तालीम बढ़ रही है शऊर लोगों में आ रहा है,
इंशाल्लाह
भी आ रही है। तो इसका ताल्लुक ये नहीं है कि किसी को जानबूझ के वो किया जा रहा है, ये सिर्फ एक मैं जो समझता हूँ ये हथकंडे हैं अपनी
सियासत को चमकाने के। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी बात की, रियल लाइक इट कि कोई बलूचिस्तान से भी आके किसी ने बात की और वहां पर भी काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल करने का, हमारे साथ रहकर बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ कॉलर, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं सर, आपकी आवाज तो आ रही है कहीं से, लेकिन चले कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम आगे
जी सर,
भाई ने जो बात की मैं देखें बात सुने, सुपर हाईवे जो बना था वो सिंध गवर्नमेंट ने,
अरे सर छोड़ दें इसको सर, अच्छा इससे आगे बढ़ते
हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, देखे देखे जो बात
नहीं फंसे रहेंगे वरना,
बात सुने सुपर हाईवे सिंध गवर्नमेंट ने बनाया था, बाद में उसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लेके वो हमारे से उसके मोटरवे बना दिया, वो टोल भी हम से चला गया और हाईवे की वो जो कंडीशन है ना वो बाकी जो मोटरवेज है उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। आप किसी भी कराची और हैदराबाद की रिहायशी को पूछ लीजिए। मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं इससे सूबे की बात ये सिर्फ इस हद तक है कि पंजाब में जो देखिए पंजाब ने वो मोटरवे नहीं बनाए, ये मोटरवे जितने बने हैं पाकिस्तान में ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम। तो मेरा होना ये है कि हमें क्या मिल रहा है बपास से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्यों नहीं सिंध और बलोचिस्तान में मोटरवे
कंप्लीट करते हैं। डिटेल रिपोर्ट आ जाए मेरे पास, फिर इस पे बात करेंगे कि क्यों नहीं आप कॉल आपके कि क्यों नहीं जो है नेशनल हाईवे यहाँ बने। तो मैंने इसकी रिपोर्ट मंगवाई है सर, आ जाएगी।
नहीं नहीं, मैं जब
तो फिर उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी मैं कोशिश बात करूंगा तो वो फिर प्रूफ के साथ नहीं होगा।
तो वहाँ सूबाइयत कहाँ से आ जाए,
इंशाल्लाह वो रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर इस पर बात करेंगे। बिल्कुल देना चाहिए, सबको देना चाहिए।
बाकी ये जितने सरकार है इनकी तो सब सरकार बलूचिस्तान।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए सर। इस पर कभी बात करेंगे हाईवे स्कीमों पर, इसीलिए वहां रिपोर्ट्स आ जाए मेरे पास, कुछ चीजें इसकी कोशिश कर रहा हूं। तो फिर इस नेशनल जो जितने भी हाईवेज हैं, चाहे सिंध में है, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में, इवन पंजाब में भी जो हाईवेज बने मोटरवेज, उस पर भी जो एक तफसीली रिपोर्ट पर फिर बात करेंगे ताकि किसका कहां कसूर है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। 8156 अस्सलाम वालेकुम।
या हेलो, थैंक यू
जी सर।
हाईवे का जहां तक है, हाँ वो जो कराची की नेशनल वो तो मुझे मालूम है, 69 में वो बनी थी
जी।
मैं खुद टूल प्लाजा तक गया था, 12 किलोमीटर दूर था वो, मुझे याद है। मैं जॉब करता था 69 में, मेरे घर के बहुत करीब है, मैं एरिया में 17 नंबर में रिहाइश था, तो दोस्त की गाड़ी में दे देखे। वो तो चलो एक बात होगी, दूसरी इस्लामाबाद लाहौर की जो मोटरवे बनाई है, कोई कंपनी ने बनाई है, ड्यूट उसने लोन दिया, उसने रिक्शा पास किया, उसने सर्वे किया, 70 मिलियन का लोन उसने पंजाब गवर्नमेंट को दिया और उन्होंने वो मोटरवे बनाई, मोटरवे अथॉरिटी ने वो नहीं बनाई। उसके बाद अब सूबे को स्केलर है, लेकिन केपी के अंदर भी नवाज शरीफ ने कोई नहीं बनाया, बहुत उसको कहा कि पिशावर सवार मोटरवे बना दो, नहीं बनाई उन्होंने। तो माना आखिर उन्होंने खुद ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया और उन्होंने वो सवार मोटरवे वो सूबाई गवर्नमेंट ने खुद अपनी बनाई है, 20 साल के लिए लोन लिया। और तो सिंध गवर्नमेंट भी अपने लोन ली एशियन डेवलपमेंट से खुद बना दे।
सर अब लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से कई चीजों पर सिंध गवर्नमेंट काम करती है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये बात फिर वही कराची पे आ जाएगी, हालांकि मेरा था कि आज फाइनेंस पे बात करेंगे। K4 के मंसूबा को ले लें, अब इसको वापडा दोबारा हैंडल कर रहा है, तो जो इनिशियली जो इनका पहली प्लानिंग हुई थी उसको इन्होंने तकरीबन 14 अरब रुपए के करीब कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है उस पर K4 के मंसूबे जो पानी का मंसूबा है उस पर सिंध गवर्नमेंट लगा दिया था, और उस पर एतराज भी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको पैसे देने से इनकार इसलिए कर दिया था कि उसका जो डिजाइन है जो चीजें हैं वो सही नहीं थी। लेकिन उन्होंने 14 अरब रुपए लगा दिए थे सिंध गवर्नमेंट ने अपने, लेकिन क्योंकि वो अप्रूव नहीं हुआ था, वो चीजें सही नहीं थी, फिर ये दिया गया वापडा को। अब वापडा उसको अगेन स्क्रैच करके दोबारा जीरो से जो है उसकी चीजें जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हालात है।
जब ये प्रोजेक्ट किया था ये प्रॉब्लम ये है कि हर दफा सिंध गवर्नमेंट K4 की पाइपलाइन को बहरिया टाउन की तरफ मोड़ देती थी। वो कहते थे भाई सारा पानी तो फिर बहरिया टाउन ले
जाएगा, चीजें हो जाएंगी।
पांच दफा यही चक्कर रहा है कि हर दफा लाइन को बहरिया टाउन की तरफ, क्योंकि नंदाली साहब की बहरिया टाउन वाली थी मोड़ देते थे, वो कॉस्ट बढ़ जाती थी, इसीलिए वो पाइपलाइन मनसूबा आज तक बनी नहीं सका, क्योंकि उसके नक्शे को ही मुनासिब बना दिया गया। वो सीधी आना चाहिए थी संजय लेक से, अब तक बन जाती
चलो सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। स्टूडियो का नंबर 4166201778 जनाब, टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक भी लेना, फिर हमारा सवाल भी वहीं है, उस सवाल का जवाब जो है मैं चाहूंगा कि अगर आप में से कोई दे सके मुझे, کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں جی گورننس صحیح نہیں ہے, حکومت کی ہے, وفاقی حکومت کی بات کر لیں یا اوور آل بات کر لیں, وفاقی حکومت کی چلیں بات کر لیتے ہیں جناب گورننس صحیح نہیں ہے اور ملک جو ہے وہ قرضوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے, تو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ تو ہمارے اوپر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, اس گورنمنٹ کے اوپر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ جو ریمیٹنس ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے ہر سال. وہ کہتے ہیں جناب تو آپ لوگ جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں جناب گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے یا ڈلیور نہیں کر رہی ہے, تو پھر اتنا اعتماد جو دنیا بھر کے چاہے وہ سعودی عرب میں کوئی پاکستانی رہتا ہو, آسٹریلیا میں رہتا ہو, نیوزی لینڈ میں رہتا ہو, نارتھ امریکہ میں رہتا ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی پاکستانی رہتا ہو, تو حکومت کہتی ہے جناب وہ تو ہم پر بہت ٹرسٹ کرتا ہے, وہ ہر سال جو ہے وہ ہمیں ہر سال ریمیٹنس جو ہے وہ بڑھا کر جو ہے وہ بھیجتا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے, ایسی کیا اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان میں کی گورنمنٹ کے اوپر کیا واقعی ٹرسٹ کرتے ہیں, یا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت بھی یہ ہوتی کہ یار لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے اور شاید گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر چل رہی ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ ایک ایماندار شخص جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے ایز اے وزیر اعظم پاکستان ہے, تو لوگوں کا جو ہے ٹرسٹ زیادہ ہے تو ریمیٹنس زیادہ آتی ہیں, تو اب بھی جو ہے ریمیٹنس وہ تو اس سال سے جس سالوں میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی ان سالوں سے جو ہے وہ ریمیٹنس زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے اور بڑھ گئی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا متھ ہے, کیا جو ہے نا کہ کہتے ہیں کہ گمک ہے کہ ہر سال جو ہے وہ ریمیٹنس جو ہے وہ دوسری طرف بڑھتی جا رہی ہے اور ہم دوسری طرف کمپلین کرتے ہیں جناب گورننس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. چلیں جناب اس کا جواب آپ سے آج کوشش کریں گے ضرور لیں, اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778, کچھ گیت سنگیت بھی شامل کریں گے اور آپ لوگ کی کالز بھی لیں گے اور کچھ اسپانسرز کے پیغامات بھی لیں گے. راجہ بادشاہ کی بات کر لیں جناب, گھر اور گاڑی کی انشورنس کے لیے آپ نے کال کرنا ہے راجہ بادشاہ کو, کہتے ہیں جناب اگر آپ کی دو گاڑیاں اور ایک گھر تو آپ کو سالانہ تقریباً $2,000 جو ہے بچا کے دیں گے گھر اور گاڑی کی انشورنس کے لیے, کال کریں راجہ بادشاہ کو 6472903773 6472903773, راجہ بادشاہ کا نمبر ہے, اور جب کال کریں تو ساز و آواز کا ریفرنس ضرور دیجیے گا. بیور ٹیل جناب اب گرمیاں آ رہی ہیں, ٹریولنگ شروع ہو جائے گی, اگر آپ کینیڈا سے کہیں بھی باہر جا رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں, چاہے ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں, دو ہفتے کے لیے جا رہے ہیں, تین دن کے لیے بھی جا رہے ہیں, تو آپ ایک بار ضرور بیور ٹیل سے کانٹیکٹ کریں, یہ آپ کو ڈیٹا رومنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں, 5G انٹرنیٹ سروس ہوگی اور آپ کو انلمیٹڈ انٹرنیٹ بھی ایز پر یور ریکوائرمنٹ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. منصور صاحب اور ان کی ٹیم یہاں موجود ہے, ویب سائٹ ہے ان کی beervertel.com beervertel.com, اور نمبر ہے ان کے ٹیم کا 416-243-9836 ان کا نمبر ہے, اور جب کال کریں تو ساز و آواز کا ریفرنس جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. چلیں جناب ایک خوبصورت سا پیارا سا گانا شامل کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا, اسٹوڈیو کا نمبر 416-620-1778.
ایسی لاگی ہو گئی میں متواری, بل بل جاؤں اپنے پیا کو ہے میں جاؤں واری واری, موہ سد بد نہ رہی تن من کی, یہ تو جانے دنیا ساری, بے بس اور لاچار پھروں میں ہاری, میں دل ہاری ہاری, میں دل ہاری, تیرے نام سے جی لوں تیرے نام سے مر جاؤں, تیرے نام سے مر جاؤں, تیری جان کے صدقے میں کچھ ایسا کر جاؤں, تو نے کیا کر ڈالا, مر گئی میں مٹ گئی میں, ہو جی ہاں جی ہو گئی میں تیری دیوانی,